एक लड़की थी, उसका नाम था सुलभा। राजा जनक के दरबार में गई, इतनी तेजस्वी प्रभावशाली कन्या कि राजा जनक ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो बेटी, तुमको किसने सताया है? बोले किसी ने सताया नहीं। तो तुमको क्या चाहिए? बोले कुछ चाहिए नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ राजा। मेरा नाम सुलभा है, मेरे माँ बाप को मैंने प्रार्थना किया कि मेरे को ये विद्या तो पढ़ती हूँ लेकिन आत्म विद्या, नास्ति विद्या समम चक्षु, तो संसार की विद्या और आत्मा परमात्मा की विद्या और योग की विद्या, ये तीनों विद्या मुझे सीखनी है। स्कूल की विद्या तो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन योग की विद्या और आत्म विद्या मुझे पानी है। तो मेरी माँ ने तो मेरे को उत्साहित किया, मेरे बाप मुझे रोकते टोकते थे लेकिन मेरी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ कि मेरे को योग विद्या और आत्म विद्या में आगे बढ़ाया। मेरी माँ का मेरे ऊपर बड़ा परोपकार। माँ ने पिताजी को जरा समझाया, थोड़ा रिझा लिया और फिर माँ मेरे को ले गई, पिताजी और माताजी चले। मेरे को गुरुजी ने योग दीक्षा दी, सारस्वती मंत्र के साथ साथ योग विद्या का प्रयोग भी बताया, प्राणायाम बताए और ध्यान करने की विधि बताई। तो मैं ध्यान करने लगी तो मेरी मूलाधार केंद्र में जो स्मरण शक्ति छुपी थी वे जागृत हो गई। पहले मैं तो चार चार बार पढ़ती तो याद रहता मुश्किल से, अब तो एक बार पढ़ती और याद रह जाए। पहले तो जरा जरा बात में परीक्षा के दिनों में मैं डर जाती, अब तो कोई भय नहीं और मेरी कवित्व शक्ति भी जगी। छह महीने के अंदर तो मैं ऐसी सिद्धि सिद्धियों की अनुभूति करने लगी कि मुझे लगा कि हाय इतना खजाना अपने हृदय में भरा है, मैं तो बड़ी रंग रह गई। लेकिन मेरे गुरु ने कहा बेटा और आगे बढ़। तो फिर मेरे गुरु ने तत्व ज्ञान आत्मविद्या का मुझे उपदेश दिया और फिर वे सुख दुख मन को होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, काला और गोरा चमड़ा होता है, ये शरीर है, शरीर हम नहीं है, हम अमर आत्मा है तो कैसे हैं, इस प्रकार का ज्ञान गुरु ने उपदेश दिया और वो विचार करके मैं परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो योग की शक्तियाँ, याद शक्ति, अनुमान शक्ति, रिद्धि सिद्धि की शक्ति, ये तो मैंने पाई। लेकिन राजन मेरे को तो 2 साल लगे, तुमको घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते ये कैसे प्राप्ति हुई, इसका मैं शास्त्रार्थ करने आई। अगर ये सब प्राप्त हो गया तो फिर तुम राज के झंझट में क्यों पड़े हो? और तुमको आत्मा परमात्मा का सुख मिला है तो फिर ये चमर डुलाने वाली खुशामत करने वाले भाट चारण क्यों? तब राजा ने कहा कि भाट चारण मैंने नहीं रखे, ये तो राज्य परंपरा की यूनिफॉर्म है और ये चमर डुलाने वाली भी राजाओं को डुलाती है, यूनिफॉर्म है। अच्छे आदमी अगर राज नहीं करेंगे तो लुच्चे आदमी के हाथ में अधिकार आ जाएंगे तो प्रजा का उत्पीड़न होगा, इसलिए गुरु आज्ञा से मैं राज्य करता हूँ। सुलभा मेरे एक हाथ पे कोई कीचड़ लगा दे और दूसरे हाथ पे चंदन का लेप कर दे फिर भी मुझे दुख सुख नहीं होता है, क्योंकि कीचड़ भी इस हाथ को लगा है और चंदन भी उस हाथ को लगा है, मैं इनसे न्यारा हूँ और परमात्मा ही मेरा प्यारा है, इस प्रकार का मुझे आत्मा परमात्मा का अनुभव। सुलभा ने जो जो सवाल पूछे किया, तुमको घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते कैसे परमात्मा का दर्शन हो गया, मेरे को तो 2 साल लगे और मैं लगातार सुबह शाम नियम से बैठती थी। गुरु ने बताया ऐसे मैंने एकाग्रता का अभ्यास किया तो 40 दिन के बाद मेरी वो कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, लेकिन तुमको तो घोड़े के रकाब में पैर डालने से ही भगवान की प्राप्ति हो गई, ये कैसे? तो जनक ने कहा कि ले अगले जन्म में हम साधना करते थे, अगले जन्म की साधना अधूरी हमारी रह गई इसलिए इस जन्म में हम राजा हुए, और अगले जन्म में मेरे गुरु भाई की भी साधना थोड़ी अधूरी हुई तो वो मेरे गुरु भाई जो थे वो अष्टावक्र गुरु बने और मैं उनका शिष्य बना। हमारी फिटिंग तैयार थी, खाली स्विच ऑन करना था। जैसे लाइट की फिटिंग हो जाती है तो स्विच दबाने से ही बत्तियां जल जाती है, ऐसे ही उनका और हमारा आपस में लेना देना था। हमारे गुरुजी ने कहा था कि इसको साक्षात्कार होगा तब तुझे कराएगा, तो वो गुरु का वचन भी फला, अगले जन्म का गुरु का ज्ञान भी फला और हमें राज्य भी मिला और परमात्मा की प्राप्ति हुई। सुलभा, मुझे तो खुशी होती है कि मेरे राज्य में छोटी सी कन्या और योग शक्ति प्राप्त की हुई, छोटी सी कन्या और आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाकर बैठी है। सुलभा, मैं तुम्हारा पूजन करना चाहता हूँ। राजा जनक, सम्राट जनक सुलभा को सिंहासन पर बिठाते और उसकी अर्घ्यपाद से पूजा करते और आरती करते, ऐसी ऐसी कन्याएं हो गई, ऐसे ऐसे बच्चे हो गए जो 11 साल की उम्र में परमात्मा का नरसिंह अवतार करा दिया, ऐसा प्रहलाद 5 साल की उम्र में भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसा ध्रुव। अभी की बात है, थोड़े वर्ष पूर्व की, नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वह अमरकंटक, अमरकंटक इलाके में एक सोम शर्मा ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम था सुमना, सुमना के पुत्र का नाम था सुव्रत। सुव्रत स्कूल में जाता आता था, लेकिन स्कूल के साथ साथ में स्कूल के कुछ शिक्षक ऐसे पवित्र आत्मा थे, तो वो पवित्र आत्मा सुव्रत के जो शिक्षक थे, आचार्य थे, वे पढ़ाने के साथ योग विद्या और भगवान की भक्ति की बातें भी उस सुव्रत को सुनाते थे। तो सुव्रत अपने साथ में अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता, तो बच्चों का नाम भी, किसी का नाम गोविंद रख देता, किसी का मोहन रख देता, किसी का मुरलीधर नाम रख देता, किसी का नाम गुरुमुख रख देता, किसी का नाम गुरुचरण रख देता, किसी का नाम हरिचरण नाम रख देता। तो ये अच्छे अच्छे नाम रखकर बच्चों के साथ खेलता, थोड़ी देर खेलता, फिर क्या करता कि वो सुव्रत बोले, ये तो खेल खेल के शरीर को थोड़ा कसरत मिली, अब असली खेल खेलो कि मन बुद्धि को भी कसरत मिले और फिर मन बुद्धि को परमात्मा की शक्ति मिले, ऐसा खेल खेलो। तो वो सुव्रत अपने बच्चों साथियों को खेल खेल कर थोड़ी देर बाद में बोलता कि चलो लंबा सांस लो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, 10-5 मिनट उच्चारण कराता, फिर बोलता कि चलो बैठ जाओ, श्वास भीतर जाता है उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो, ऐसे करते करते भगवान के ध्यान का बच्चों को चस्का लगा दिया। तो सुव्रत के संपर्क में आने वाले बच्चे भी, अलग अलग स्कूलों में जो पढ़ते थे पड़ोस के बच्चे, उनका भी मन प्रसन्न होने लगा, उनके माँ बाप भी सुव्रत को प्यार करने लगे। सुव्रत के मन में ये बात आकर बैठ गई कि तीन प्रकार की विद्या होती है, एक तो स्कूल में पढ़ते वो विद्या, दूसरी योग विद्या और तीसरी आत्मा विद्या। तो अब स्कूल की विद्या तो पढ़ लिया, मेरे को योग विद्या सीखनी है, आत्म विद्या में आगे बढ़ना है। ऐसा सोचकर भगवान को पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया सुव्रत ने। माँ बाप को बोला कि मैंने संसार की विद्या, गुरुकुल की विद्या तो पा ली, लेकिन अब मुझे योग विद्या और आत्म विद्या पानी है। वैधर्य पर्वत के सिद्धेश्वर महादेव के पास एक कुटिया में जाकर उसने साधना की और उस साधना से उसके मन में जो बाकी का थोड़ा सा कमी थी वो दूर हो गई और उसका ध्यान दृढ़ हो गया। ध्यान दृढ़ होने से उसकी बुद्धि में परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हुआ और ईश्वर के दर्शन करके अपने माता पिता को भगवान के धाम की प्राप्ति हो, ऐसा भगवान नारायण से वरदान लिया और मुझे भी श्री हरि का सगुण और निर्गुण का दर्शन हो और मैं अंत संसार में रहते हुए भी किसी चीज को सच्ची न समझूं, सब छोड़ के जाना है, सच्चा एक परमात्मा तुम हो, ऐसा मेरा ज्ञान दृढ़ रहे। भगवान सुव्रत के इस पवित्र वरदानों से बड़े प्रसन्न हुए, माता पिता का और दादा दादी और नानी नानी का आदि सात सात कुल 21 कुल का उद्धार करने वाला सोम शर्मा का पुत्र जिसकी मां का नाम था सुमना, सुमना के सपूत सुव्रत ने अपना तो उद्धार किया, अपने माता पिता का बेड़ा पार किया और बच्चों के लिए प्रेरणा का कारण बन गया। अब इसमें से कोई सुव्रत बन जाए, कोई विवेकानंद बन जाए, कोई शिवाजी महाराज बन जाए, कोई राम तीर्थ बन जाए, कोई गोलवेलकर बन जाए, कोई कुछ बन जाए। एक संत जिसका नाम तुमने सुना होगा विनोबा भावे, सुना है नाम, आचार्य विनोबा भावे। उनके पिता का नाम था नरहरि भावे, उनकी माँ का नाम था रखुनाई। रखुनाई और नरहरि भावे मानते थे कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य करना चाहिए, तो एक गरीब गुरबे विद्यार्थी को लाकर घर में रख देते थे। तो रखुनाई अपने बेटे विनोबा को, विनोबा छोटे थे, बच्चे होंगे ना तुम्हारे जैसे हुए होंगे कि नहीं, तुम्हारे जैसे रहे होंगे ना बच्चे, तो जब विद्यार्थी थे तो उनकी माँ उनको धर्म की बातें सुनाती थी, और बेटा ध्यान करने से ऐसा लाभ होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, गरीब गुरबे की मदद करनी चाहिए, मौन रहना चाहिए, तो बेटा सब में समानता रखनी चाहिए, सब में ईश्वर है समानता रखनी चाहिए। तो एक दिन विनोबा भावे ने अपनी माँ से ही सवाल पूछ लिया कि माँ तुम तो बोलती हो सबसे समानता रखनी चाहिए, लेकिन माँ मैं बोलूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? बोले नहीं बेटा बोलो। माँ मेरे को एक शंका होती है कि ये जो गरीब विद्यार्थी, मोहताज गरीब कुटुंब का विद्यार्थी अपन घर में रखते हैं तो तुम गरम गरम रोटी तो उसको खिलाती, और कभी बासी रोटी बच जाती तो मेरे को खिलाती, कभी खिचड़ी या चावल बच जाते बासी तो तू मेरे को देती और उसके लिए तू ताजा बनाती है, तो तुम ही बोलती हो कि सबसे समता का व्यवहार करना चाहिए और तुम ही विषमता का व्यवहार करती हो। मेरी माँ होकर अपने बेटे को तो बासी देती हो रोटी और उस गरीब अनाथ को तो तुम ताजी रोटी देती हो, तो ये भी तो विषमता है। तो भारत की नारी ने क्या सुंदर जवाब दिया है, रखुनाई को धन्यवाद। ऐसी देवियों के कुख से ही तो संत हृदय पैदा होते महापुरुष। उसने कहा कि बेटा मेरे मन में अभी विषमता है, वो गरीब विद्यार्थी तो उसमें तो मुझे भगवान दिखते, भगवान का रूप है, और तू मेरा बेटा है, जब तक तेरे में भगवान नहीं देखूंगी तो मैं क्या करूं, वो तो भगवान का रूप है, अतिथि है, लेकिन तेरे में मेरा अभी पुत्र भाव है, तो अपने पुत्र को तो कभी बासी बासी भी खिला देना चाहिए, लेकिन वो भगवान का रूप है, उसको बासी क्यों खिलाऊं, जब तू भी भगवान का रूप देखेगा और संत बन जाएगा तो तुझे भी ताजा ताजा खिलाऊंगा। तो माँ मैं भी संत बन के दिखाऊंगा, प्रण कर लिया और आचार्य विनोबा भावे सच्चे संत बनकर दिखे और दुनिया जानती है, नाम तो सुना है तुमने। तो ऐसी ऐसी माताएं संस्कार भर देती है बच्चों में, अच्छे अच्छे शिक्षक बंधु संस्कार भर देते बच्चों में। तो ऐहिक पढ़ाई के साथ साथ भक्ति की पढ़ाई, मानवता की पढ़ाई, योग की पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थी भी धनभागी हैं और उनके माता पिता शिक्षक बंधु भी। नारायण हरि, नारायण हरि।